ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। बाबा आज कह रहे हैं कि मैं हूं कालों का काल। कालों का काल क्या करने आया है? कालों का काल क्या करने आया है सतीश भाई? थोड़ा जोर से बोले, कालों का काल क्यों आया यहां? राहुल भाई, ले जाने के लिए आया। महेंद्र भाई, कालों के काल को क्या जरूरत पड़ गई यहां आने की? बोलो क्यों आया? शांता कृष्णा भाई, क्यों आया वो यहां? ठीक सुनाया, आंसर आया है सतीश में। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको काल पर विजय प्राप्त कराने के लिए। काल पर विजय का अर्थ क्या है? ये सोचने की बात है, मनन की बात है। काल पर विजय किसको कहा जाता है? क्या हम शरीर नहीं छोड़ेंगे? क्या समय हमारे लिए रुकेगा? तो काल पर विजय का अर्थ क्या है? दूसरी बात, कहता विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें महामंत्र देता हूं, मन मना भव। अब दोनों का आपस में संबंध क्या है? मन मना भव के मंत्र से हम काल पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? ये विचार करेंगे, अभी नहीं करते हैं, अभी मुरली सुनेंगे। परंतु ये दो प्रश्न हमने, काल पर विजय का अर्थ क्या है, फिर मनमना भव के मंत्र से हम काल पर विजय कैसे पाते हैं? मंत्र माना एडवाइस, और एडवाइस बाबा दे रहा है मनमना भव। तो मनमना भव से काल पर विजय कैसे पाते हैं? ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मीठे बच्चे, कालों का काल, बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त करानी। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। ठीक है, प्रश्न है, रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। आज 27 तारीख है ना, आज के दिन चाचा नेहरू ने भी शरीर छोड़ा था हिंदुस्तान के, और हमारे यज्ञ में भी चाचा जी जो आदरणीय ब्रिजवन भाई के फादर थे उन्होंने भी 27 को शरीर, तो दोनों चाचा उधर ओम उधर ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वो है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्मने नमः, वो है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वो रहते हैं परम धाम में जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, वो है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस है इसकी निशानी, शिव जयंती भी यहां ही मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे, कब कब बाबा ने रीजन दिया है, तुम विश्व के मालिक थे कब, रीजन है उसमें। अनिल भाई बोलो कब विश्व के मालिक थे, बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, नई बात नहीं है। गौरव भाई बोलो तुम विश्व के मालिक थे कब थे, कब थे विश्व के मालिक। बहनों सुनो, राज दीदी विश्व के मालिक कब थे, बाबा मुरली में सुनाते हैं। लक्ष्मी देवी क्या कहती हैं, जब जब हम श्रेष्ठ थे। सुनो, तुम विश्व के मालिक थे जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो विश्व के मालिक थे, एक धर्म था, एक राज थी, सब कुछ एक था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, इसलिए अपने को पावन देवता कह नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो ना सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। बल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहीं लेना है, विश्व जन्म लेना पड़े, वापस तो जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर के ले जाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं, सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे आते गए। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में क्या कारण है जो डाउन आ जाते हैं? सिंपल कारण, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, ये भारत स्वर्ग था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। क्या निशानी है कि श्री कृष्ण रचना है? सरोदी जी, पत्ते पर दिखाते हैं, पत्ते वाली पर। श्री कृष्ण रचना है ये सिद्ध होता है जिनको पत्ते के ऊपर दिखाया जाता है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारती सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सत्युग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली नहीं। इसको कहा जाता है विमला दीदी, इसको कहा जाता है उषावन, बोलो बोलो बोलो, इसको कहा जाता है उर्मिलन, बोलो धर्म ज्ञान, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानी। क्यों? बाप की ग्लानी करते हैं। अभी ये है कल्प का संगम समय, इस समय ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूं तो तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। मैं तुमको क्या बनाता हूं वृंदावन, मैं तुमको क्या बनाता हूं शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवी देवता, और तुम क्या बनते हो, तुम अपन को क्या बनाते हो, वो फिर बाबा ने बताया। बाबा के बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए, तुम भारतवासियों ने मिनिमम एक जन्म, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिब्रेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं, चित्र तो बराबर है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना, उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वंश होता है, ब्राह्मणों का वंश होता है, ब्राह्मणों का वंश होता है? नहीं होता है, ब्राह्मणों का वंश नहीं होता है, ब्राह्मणों का एक ही जन्म है। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है, भारत ही है और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वो तो हेवन में होते ही नहीं, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनः जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके, सत्युग में ये शास्त्र आदि होते नहीं। ये सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, अलॉय। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलॉय पड़ी, इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब बाबा तमो प्रधान को सतो प्रधान कैसे बनाते हैं? याद से बनाते हैं ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब डैश बनना है। सपना दीदी, तुमको अब डैश बनना है, बोलो कमलेश्वर। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ज्योति वेरी सिंपल। लक्ष्मीबेन, तुमको अब, देखो भाई बोल रहे हैं। शशिकर्मी, आत्म अभिमानी बनना है, सिंपल। बाबा कहते हैं तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं, अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं, अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, सत्युग में है राम राज्य। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं तुम ना आत्मा को जानते हो ना परमात्मा को जानते हो, तो बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, इसकी कोई निशानियां हैं? हमने 84 जन्म लिए हैं, इसकी कोई निशानी भक्ति में है? कौन सी है भाई? बोलो। हाँ, इसकी निशानी है, 84 जन्म हम लेते हैं भक्ति में, इसकी निशानी है। अलका बहन बताएगी। मदद मिल रही है? 84 कोस की यात्रा मथुरा में होती है, मथुरा वृंदा। 84 कोस की यात्रा, दूसरा 84 घंटे वाली देवी भी है, और एक और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, एक और भी निशानी है जिसमें 84 जन्म हम लेते हैं, वो एक निशानी बनी हुई है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं, परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बीज रूप होने के कारण उनको, बोलो, बीज रूप होने के कारण उनको क्या कहते हैं? बोलो बोलो। शिव बाबा बीज रूप है, बीज रूप होने के कारण उनको क्या कहते हैं? अब बोलो। सत चित आनंद स्वरूप। बाबा कहते हैं बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़ी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। बाप कहते हैं, टीचर्स बहने, आज स्पेशल चीज है, बाबा परमधाम से आया है, तो बहने आई है ना, बाबा का सेंटेंस सुनो। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले जाऊंगा, सौगात मिली ना सबको। परमधाम से बाबा आता है, 5000 वर्ष के बाद आके मिलता है, तो कहते मैं कुछ तो सौगात अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजा पिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं, अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। गोपीबंध सवाल उठता है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वर्षा हमारा हक है, फिर पुरुषार्थ क्यों? वर्षे पर तो अधिकार है, तो पुरुषार्थ क्यों? मैंने पढ़ दिया है, पढ़ ही दिया है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ क्यों करना है, वर्षे की क्वालिटी है ना, एक है सतो प्रधान सृष्टि में सतो प्रधान वर्षा, और एक है थोड़ा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माम एकम याद करो, सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए केवल मनमना भाव नहीं है, सतो प्रधान बनना है तो केवल मनमना भाव नहीं है, माम एकम है, माम एकम है। बाबा कहते हैं भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, रूहानी यात्रा करनी और करानी है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, काम पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख भी नहीं जानी चाहिए। चाहे कितना भी कर लो, अपना कमाया 5 रुपया जो है वो ज्यादा वैल्यूबल है। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो वो समय बच जाएगा। फिर मम्मा की मुरली है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों, परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप होनी चाहिए। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट जाएंगे। भले वो सबका सुख दाता है परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। तो साथ लेंगे, सहारा लेंगे तब तो वो साथ देगा ना। तो तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, पर ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, अव्यक्त इशारे। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निर्संकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, ये दूसरी बात है। हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निर्संकल्प बने। सदा ध्यान रहे मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। एक रस स्थिति में स्थित होंगे, होने नहीं देगी। अगर कर्मेंद्रियों की आकर्षण है तो बाप का बनने नहीं देगी और एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। ये थे प्यारे बाबा के आज के चले हुए मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली क्या रही? काल पर विजय पानी है। और काल पर विजय पाने में काल पर विजय पाना किसे कहा जाता है? और दूसरा, मन मनोभव का रोल क्या है? मन मनोभव से हम कैसे काल पर विजय पाते? ओके, अच्छा। ओम शांति।
ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। हमारी दिल्ली की सब टीचर्स ओम शांति भवन में हाजिर है। गर्मी तो नहीं लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहने कह रही थी कि ओम शांति भवन नहीं, तो सब चलो ओम शांति भवन में। तो सब आ गए, कोई भी नहीं वहां रुकी। तो बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। तो सुनैना बहन ने बता ही दिया होगा, सुनैना बहन कहाँ है? बाकी मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए एक सूचना है। मधुबन निवासी और एवं ट्रायल के भाई बहने योग तपस्या भट्टी कार्यक्रम के लिए जाएंगे। तो शांतिवन के मीटिंग हॉल में भट्टी रखी गई है मधुबन निवासी और उनके साथ ट्रायल के भाई बहनों के लिए। पहला ग्रुप शुरू होगा 29 मई को। तो जो मधुबन निवासी उस भट्टी में जाना चाहते हैं, शाम को सायंकाल उद्घाटन सत्र होगा 29 तारीख को मीटिंग हॉल में। और उद्घाटन के बाद 30-31 भट्टी करेंगे और पहली तारीख नाश्ता करके वापस आएंगे। और फिर पहली तारीख से ही दूसरा ग्रुप मधुबन निवासियों का जाएगा, जो शाम को भट्टी का उद्घाटन होगा। और 2-3 तारीख योग तपस्या भट्टी चलेगी और फिर 4 सुबह वापस आएंगे। ये 2 ग्रुप में मधुबन निवासी भाई बहनों की भट्टी होगी मीटिंग हॉल में। खास शारदा बहन इसका पूरा आयोजन कर रही है नीचे शांतिवन में। तो ये सबके लिए ये प्रोग्राम है। तो अपना नाम जरूर आप लिखाएंगे रिसेप्शन में जाकर या वहाँ बोर्ड पर लगा देंगे। ताकि आप वहां अपना नाम डाल सके, या रिसेप्शन में ही आप जाएंगे और पहला ग्रुप या दूसरा ग्रुप में आप भाग लेना चाहते हैं उसमें जाएंगे। और दिल्ली की टीचर्स बहनों के लिए विशेष सूचना है, अभी आप सबके लिए फोटो सेशन होगा बाहर ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर। और अगर आपको कोई फोटोज चाहिए, मम्मा बाबा दादियां वरदान बर्थडे कार्ड ट्रांसलाइट आदि कोई भी फोटो चाहिए वो उपलब्ध है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में, वहां आप जाकर ले सकते हैं सुबह 8:30 से 12 बजे तक। और फोटोग्राफी डिपार्टमेंट जो दूध का भंडारा है उसके नीचे है, जहां से टेलरिंग सेक्शन में जाते हैं वहीं पर फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है।
एक और अनाउंसमेंट है सभी टीचर्स बहने जो दिल्ली से आए हैं, नाश्ता के पश्चात जो है वो 9 से 9:45 चार धाम की यात्रा का समय रखा हुआ है ताकि धूप कम होंगी और अगर लेट करेंगे तो नीचे से भी पार्टियां आने की भी संभावना है, तो 9 से 9:45 के बीच में सभी चार धाम की यात्रा करेंगे, उसके पश्चात सभी मेडिटेशन हॉल में भट्टी के लिए पहुंचेंगे। थैंक यू। हाँ, जैसे दीदी ने कहा कि अभी फोटो सेशन रहेगा, आफ्टर मेडिटेशन के बाद सभी फोटो सेशन के लिए बाहर सीढ़ियों पे खड़े हो जाएंगे।
सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद आप सभी उठेंगे।